ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 46 मेरे पीछे दोहराएं। तपः मे हृदयम् ब्राह्मणा तानो विद्या क्रिया आकृतिः अंगानि कृत्वः जातः धर्मः आत्मा असवः सुरः। तपो मे हृदयं ब्रह्मणा तनो विद्या क्रियाया कृतिः अंगानि कृत्वो जातः धर्म आत्मा सव सुरः। तपो मे हृदयं ब्रह्मणा तनो विद्या क्रिया कृति अंगानि कृत्वो जातः धर्म आत्मा सव सुरः। तपो मे हृदयं ब्रह्मणा तनो विद्या क्रिया कृति अंगानि कृत्वो जातः धर्म आत्मा सव सुरा। तपः मन का नियंत्रण, योग तथा ध्यान जैसी तपस्याएं। मैं मेरा हृदयम हृदय ब्राह्मणा हे ब्राह्मण तनो शरीर विद्या वैदिक शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान क्रिया आध्यात्मिक कार्य आकृति स्वरूप अंगानि शरीर के अंग कृत्वा वैदिक वांगमय में उल्लिखित कर्मकांड तथा यज्ञ जाता पूर्ण किए गए धर्म कर्मकांड संपन्न करने के लिए धार्मिक सिद्धांत आत्मा मेरी आत्मा असवह प्राणवायु सुरह देवता जो भौतिक जगत के विभिन्न विभागों में मेरे आदेश को लागू करते हैं। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ शिल्पोपाद द्वारा, मेरे पीछे दोहराइए शिल्पोपाद की। हे ब्राह्मण ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय है। स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है और आध्यात्मिक कार्य तथा आनंद अनुभूति ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। उचित रीति से संपन्न हुए कर्मकांड तथा यज्ञ मेरे शरीर के विविध अंग हैं। पुण्य या आध्यात्मिक कार्यों से उत्पन्न अदृश्य सौभाग्य मेरा मन है और विविध विभागों में मेरे आदेशों को लागू करने वाले देवता मेरे जीवन तथा आत्मा है। तात्पर्य बढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। कभी कभी नास्तिक लोग तर्क करते हैं कि ईश्वर हमें आंखों से नहीं दिखते, इसलिए वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। उनके लिए भगवान यहाँ पर ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे वे ईश्वर को उनके निराकार रूप में देख सकते हैं। बुद्धिमान लोग ईश्वर को साकार रूप में देख सकते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है, किंतु यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करने के लिए आतुर है तो वह उन्हें आमने सामने देखना चाहता है, तो वह इस वर्णन के माध्यम से भगवान को देख सकता है जिसमें उनके शरीर के विविध आंतरिक तथा बाह्य अंगों का चित्रण हुआ है। आध्यात्मिक जीवन का पहला सिद्धांत है तपस्या में लगना, अर्थात भौतिक कार्यकलापों से मुख मोड़ना। इसके बाद आध्यात्मिक कार्य आते हैं, यथा वैदिक यज्ञ करना, वैदिक ज्ञान का अध्ययन, भगवान का ध्यान तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं का भी सम्मान करे और ये समझे कि वे किस तरह स्थित हैं और किस तरह कार्य करते हैं तथा इस भौतिक जगत के विभिन्न विभागों के कार्यों का किस तरह प्रबंध करते हैं। इस तरह मनुष्य देख सकता है कि ईश्वर किस तरह विद्यमान है और भगवान की उपस्थिति के फलस्वरूप किस तरह हर वस्तु की समुचित व्यवस्था होती है, जैसा कि भगवान ने भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, मध्या दक्षिण प्रकृति सुएते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उसके शासनकाल में ये जगत बारंबार सजित और विनष्ट होता रहता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को देखने में अक्षम है, यदि भी वे अपने विभिन्न अवतारों में कृष्ण रूप में वर्तमान हैं, तो वे भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों को देखकर वेदों में दिए गए निर्देशों के अनुसार भगवान के निर्विशेष रूप को देख सकता है। वैदिक आदेशों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य धर्म कहलाता है, जैसे कि यमदूतों ने वर्णन किया है भागवतम के 6वें स्कंद के 1वें अध्याय के 40वें श्लोक में, वेदा प्रणिहितो धर्मो हि धर्मस्तत् विपर्यय, वेदो नारायण है साक्षात स्वयंभू रीति सुषुमा। जो वेदों में निर्धारित हुआ है वह धर्म है, इसका उल्टा अधर्म है। वेद प्रत्यक्ष भगवान नारायण है, वे स्वतः उत्पन्न है, ऐसा हमने यमराज से सुना है। इस संबंध में श्रील माध्वाचार्य की टिप्पणी है, तपो अभिमानी रुद्रस्तु विष्णु हृदयाम आश्रितः विद्या रूपा तथा वो मां विष्णु स्तनुमुपाश्रितः श्रृंगाराद्या कृतिगत क्रियात्मा पाक शासनः अंगेषु कृत्वः सर्वे मध्य देहे च धर्मराट प्राणो वायश्चितो गतो ब्रह्माद्या स्वयशु देवता। विभिन्न देवता भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं और अपने विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम पड़े हैं। बहुत ही बढ़िया श्लोक है और बहुत ही कठिन भी है, डिफिकल्ट। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्री युत पद कमलं श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपं सागर जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कलतरु भैश्च कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु बाधाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मन का नियंत्रण योग तथा ध्यान जैसी तपस्याएं मेरा हृदय है। तप मेरा हृदय है, योग ध्यान और तपस्या भगवान का हृदय है। ज्यादा नहीं हो गया? विद्या वैदिक शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान शरीर है, आध्यात्मिक कार्य तथा आनंद अनुभूति अर्थात जो कर्म हम करते हैं कृष्ण भावना भावित वो भगवान की आकृति है। आकृति मीन स्वरूप, वो भगवान का स्वरूप है। अंगानी का शरीर के अंग वैदिक उचित रीति से संपन्न हुए कर्मकांड तथा यज्ञ अर्थात जो यज्ञ करते हैं वो भगवान का डिफरेंट डिफरेंट अंग है। अलग अलग अंगों की परिभाषा दी गई। पुण्य तथा आध्यात्मिक कार्यों से उत्पन्न अदृश्य सौभाग्य मेरा मन है। पुण्य तथा आध्यात्मिक कार्य अर्थात जो प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं कि जो भी कार्य हम वेदों के अनुसार करते हैं उसे धर्म कहते हैं, अर्थात धर्म जो है मेरा मन है। और लास्ट में कहा गया है विविध विभागों में मेरे आदेशों को लागू करने वाले देवता मेरे जीवन तथा आत्मा है। अश्वः अश्वः मतलब प्राणवायु अर्थात वो मेरे प्राण है। तो भगवान ने यहां पर अपना जो पूर्ण स्वरूप है उसकी व्याख्या दी हम लोगों को समझाने के लिए। पर्टिकुलरली किनके लिए ये व्याख्या दी जा रही है? रूपा जी परपट में एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि तो वह भौतिक प्रकृति के कार्यकलापों को देखकर वेदों में दिए गए निर्देशों के अनुसार भगवान के निर्विशेष रूप को देख सकता है। ये निर्विशेष क्या होता है? व्हाट इज निर्विशेष? हम लोग पढ़ते हैं निर्विशेषा शून्यवादी, रोज बात करते हैं। व्हाट इज निर्विशेष? निर्विशेष का मतलब क्या है? निर्विशेष का मतलब है निराकार। संधि विच्छेद करेंगे तो निर्विशेष में से दो शब्द निकल के आते हैं, एक निर दूसरा विशेष। विशेष क्या है? विशेष मीन्स स्पेशल। ये बड़ा विशेष मंदिर है, ये बड़ा विशेष व्यक्ति है। विशेष का मतलब क्या है? समथिंग विच इज स्पेशल। और निर्विशेष जो विशेष नहीं है। विशेष का मतलब है शेष से भी कुछ अधिक। जब हम निर्विशेष की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये विशेष चीज हमको दिखाई जो देनी चाहिए वो नहीं दे रही। तो भगवान का लिए जब विशेष शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उसका क्या अर्थ है? भगवान के लिए जब हम विशेष शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या अर्थ है? मतलब भगवान विशेष हैं, मतलब भगवान का जो स्वरूप है, जो रूप है, वो सगुण और साकार श्याम सुंदर स्वरूप है, अरूप नहीं है या निराकार नहीं। पद्म पुराण के अंदर उल्लेख आता है, जब शिवजी जो है भगवान कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कैलाश लोक के सघन वन में अकेले बिल्कुल सुनसान जगह पे जप चल रहा, तपस्या चल रही है, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने गरुड़ नामक वाहन के ऊपर सवार होके उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, रुद्र मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे वर मांग सकते हो। तो शिवजी ने एक क्षण भी नहीं लगाया मांगने में, परम वैष्णव हैं, तुरंत याचना कर दी, एकदम जैसे कि तैयार बैठे थे, एक पल भर की भी देरी नहीं लगाई, ऐसा ना हो कि मैं मांगने में पीछे रह जाऊं। तो क्या मांगा? हे भगवान, मुझे अपना सच्चिदानंदमय परात्पर निष्क्रिय परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप के दर्शन कराए। आप प्रकट हुए हैं एक अलग विस्तार, अलग रूप लेके, पर मुझे आपका सच्चिदानंद घन स्वरूप चाहिए, जिसको लोग निष्क्रिय कहते हैं, परात्पर कहते हैं, सच्चिदानंद घन कहते हैं, और उस स्वरूप के मुझे दर्शन कराइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारी याचना से प्रसन्न हूं, अगर तुम मेरे इस स्वरूप के दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें यमुना जी के पश्चिमी तट पर वृंदावन नामक ग्राम में आना पड़ेगा, ये स्वरूप वहीं उपलब्ध है और कहीं नहीं। तो शिवजी पार्वती से बता रहे हैं कि मैं फिर जो है आकाश मार्ग से सीधा यमुना के पश्चिमी तट पर वृंदावन नामक ग्राम में पहुंचा, तो वहां मैं जाके क्या देखता हूं, एक 16 वर्षीय कुमार 16 ईयर ओल्ड दाएं हाथ में बांसुरी पकड़े हुए और बायां हाथ एक षोडशी कन्या के कंधे पे रखे हुए खिलखिला के हंस रहा है, आसपास उसके गोपियों का समूह है। मुझे देखते ही उस बालक ने कहा, आओ रुद्र, तुम मेरे जिस स्वरूप के दर्शन करना चाहते थे वो तुम्हारे समक्ष है, दिस इज माय ओरिजिनल स्वरूप, लोग मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, इसलिए मुझे अरूप या निराकार कहते हैं। निराकार मतलब जिसका आकार नहीं है। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैनॉट सी मी, उनकी आंखों में ये योग्यता नहीं है कि मेरे उस स्वरूप के दर्शन कर सकें। मेरे गुण असीम हैं, अनंत हैं, उनको मापा नहीं जा सकता, इसलिए लोग मुझे निर्गुण कह देते हैं। और टेक्निकली भगवान जो है सगुण और साकार है। तो भगवान के दर्शन करने की योग्यता हम पे होनी चाहिए, परंतु कलयुग के अंदर भगवान ने इतनी कृपा करी है हम पे, इन बद्ध जीवों पे, हम लोग निपट मूर्ख हैं, हम पे कितनी कृपा करी है अब उसका अंदाज नहीं लगा सकते। बिना दिव्य चक्षु दिए, बिना स्पेशल योग्यता दिए हुए भगवान हमको अर्च विग्रह के रूप में दर्शन देने के लिए हमेशा उपस्थित है, और एक जगह नहीं, अनंत स्थानों में, अनंत। आप भगवान के अर्च विग्रह की गणना नहीं कर सकते, कितने स्थानों पर हैं, कितनी जगह पर है, इट इज इमेजरेबल, अपरिमेय है, गिनती नहीं करी जा सकती, मापा नहीं जा सकता। अगर एक व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पा रहा है, भगवान को सगुण साकार स्वीकार नहीं कर पा रहा है, भगवान के सगुण साकार श्याम सुंदर स्वरूप का वर्णन नहीं समझ पा रहा है, तो भगवान उसको यहां वर्णन देते हैं। अपने थॉट्स में तुम मुझे समझ सकते हो, अपने विचारों में मुझे समझ सकते हो, आप ध्यान करके देखिए, मेरा स्वरूप समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? दो तरह की परसेप्शंस होती हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। सरकार आपके सामने उपस्थित है अपने कैबिनेट के और प्रधानमंत्री के स्वरूप में, लॉ एनफोर्स कर रही है, कानून आपके ऊपर लागू है, आपको मालूम है ये प्रधानमंत्री है, ये मिनिस्टर 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 है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये पुलिस मंत्री है, ये गृह मंत्री है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप सब मंत्रियों को देख सकते हैं, सबसे बातचीत कर सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं, पर यहां बैठे हुए आपको कोई दिखाई दे रहा है? कैन यू सी समबडी? और फिर भी उपस्थित है। अगर आपने दूसरे आदमी को पीट दिया तो आपको पता है आपको थाने जाना पड़ेगा, एक डर है, एक फियर है, मींस यू नो द लॉ इज प्रिवेलिंग, लॉ इज प्रेजेंट हियर। उपस्थित ना होते हुए भी, आपके सामने ना होते हुए भी, आप ये फील कर सकते हो कि यस लॉ इज प्रिवेलिंग हियर, लॉ यहां पर उपस्थित है। दिस इज इनडायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट आपके सामने है, यहां पे जज बैठा हुआ है, सामने चार पुलिस के सिपाही खड़े हैं, सामने बत्ती के ऊपर आप उसको क्रॉस करेंगे, तुरंत जज ने आपको झटका दिया, जवान गार्डअप पकड़ा दिया। वो नहीं प्रेजेंट है, देख नहीं रहा है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, पुलिस वाले अपने थाने में बैठे हुए, तब भी आप लाल बत्ती पार करते हुए डरते हो यार कहीं कुछ पकड़े ना जाए, कहीं हो ना जाए। मीन्स लॉ सामने होते हुए है तो भी उपस्थित नहीं है तो भी आपको उपस्थित दिखाई देता है। सिमिलरली भगवान को जब समझना है तो भगवान की सृष्टि के क्रियाकलापों से समझना है, देन वी अंडरस्टैंड कि यस भगवान है और उनका ये स्वरूप है। साधारण व्यक्ति कहता है कि हमने तो भगवान को देखा नहीं, हम उन्हें क्यों स्वीकार करें, हमने तो भगवान को देखा नहीं, हम उसे क्यों स्वीकार करें। क्लास चल रही थी, टीचर पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स खूब ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन रहे थे। टीचर ने कहा कि जब तक आप किसी वस्तु को देख ना लें तब तक आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो है। स्टूडेंट्स ने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर एक स्टूडेंट ने उसमें से इनकार कर दिया, आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता आपकी बात का, मैं विश्वास नहीं करता। टीचर ने दसियों एग्जाम्पल दिए कि आप देखेंगे तभी विश्वास करेंगे। आपने पानी को देखा है? बोला हाँ जी देखा है। बर्फ जमती देखी है? हाँ जी देखी है। भाप बनती देखी है? हाँ जी देखी है। बादल बनते देखे हैं? हाँ जी देखे हैं। पानी बरसता देखा है? हाँ जी देखा। इसका मतलब है पानी है, मतलब आप जिस वस्तु को देख रहे हैं, जिस वस्तु को आपने अपनी आंखों से देख लिया है, उसी वस्तु के बारे में विश्वास करते हैं कि ये यहां पर है। अब बहुत आर्गुमेंट्स दिए उसने, बहुत तर्क वितर्क की बात हुई, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट ने कहा मास्टर जी बात तो आपकी ठीक है, परंतु मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले तरे? बोले आपने कभी दिमाग देखा है? बोले नहीं। बोले ये जो सामने मास्टर जी खड़े हैं, आपने इनका दिमाग देखा है? स्टूडेंट्स ने कहा नहीं। इसका मतलब है इनके पास दिमाग नहीं है, देखा नहीं है ना, वी हैव नॉट सीन। पर मास्टर के पास दिमाग है, इसका परसेप्शन, इसका प्रूफ कहां से मिलता है कि ही इज टीचिंग अस सो मेनी थिंग्स, ही रिमेम्बर्स एंड टीचेस अस। उसके बाद बुद्धि है, दिमाग है, तभी तो हमको पढ़ा रहा, वरना पढ़ा नहीं पाता। दिस इज इनडायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट क्या है कि देखना, दिमाग देखेंगे तब दिमाग पे भरोसा करेंगे। हमने इनका दिमाग देखा नहीं, कैसे भरोसा कर लें कि इनके पास दिमाग है। तो यहाँ भगवान जो है बता रहे हैं कि आप किस तरीके से मेरे बारे में सुन के समझ के पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस आई एम एग्जिस्टिंग और मेरी फॉर्म क्या है। एक अंधा व्यक्ति घर में कहने लगा कि मुझे कथा सुनने जाना। अब अंधे को तो भगवान दिखाई देंगे नहीं, वो तो नहीं समझ सकता। अंधा व्यक्ति जब घर के अंदर चलता है तो उसको परसेप्शन है, नाली ऐसे होती है तो नाली को फील करके नाली के ऊपर से क्रॉस कर जाता है, रेलिंग ऐसे होता है रेलिंग को पकड़ के पार कर जाता है, रोड ऐसे होती है उसकी ठंडी लगा लगा के रोड के ऊपर क्रॉस करके चला जाता है। वो तो देख नहीं सकता, ही कैन नॉट सी। पर बिना देखे भी आउट ऑफ हिज सेंसेस अपनी इंद्रियों के द्वारा, और उसकी आंख वाली इंद्री नहीं है तो उसकी स्पर्श इंद्रियां तेज हैं, कर्णेन्द्रियां तेज हैं, उसकी घ्राण शक्ति तेज है। ही कैन ओहो यहां बाग लगता है, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। इज नॉट सीन इट इज ए पार्क और इट इज नॉट, वो देख नहीं सकता। यहां टॉयलेट है, बड़ी बदबू आ रही है, ही कैन स्मेल। वो पावर जो है बाकी इंद्रियां जो है उसकी आंख को सपोर्ट कर रही है। यस ही कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, ही कैन फील, ही कैन विजुअलाइज कि यस ये हो रही। तो जब वो अंधा व्यक्ति जो है मंदिर जाने के लिए तैयार होता है तो घर वाले उसको जो है प्रताड़ना करते हैं, उसे कहते हैं भाई तू देख तो सकता नहीं ना, मंदिर जाके करे। अरे वहां कथा हो रही है, कथा सुनूंगा ना, तो तू महात्मा जी को देख पाएगा ना, तू भगवान को देख पाएगा। तो कथा सुननी है ना, हम वो रिकॉर्ड करके यहां ला देंगे, यहां सुन लियो, रिकॉर्डर है ना आजकल, रिकॉर्ड करके ला देंगे, यहां सुन लियो। अब तेरे को ले जाएंगे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर तेरे को सड़क पार कराएंगे, फिर मंदिर में ऊंची नीची जगह होगी, ऊपर चढ़ेगा, इतनी सीढ़ियां राधा पार सारथी में चढ़ के ऊपर जाएगा, वहां पहुंचेगा। है अल्टीमेटली कितना कष्ट, हम लोग अपने कष्ट से बचने के लिए उस व्यक्ति को वो मंदिर में नहीं ले जाना चाहते। तो उस व्यक्ति ने एक ही बात कही, उसने कहा मैं तो अंधा हूं, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो मेरे पे आंखें रखते हैं, उनकी तो आंखें हैं, वो तो अंधे नहीं हैं, वो तो मुझे कृपा कर सकते हैं। ही कैन थ्रो हिज मर्सी ऑन मी, वो तो अपनी दया मुझ पे कर सकते हैं, उनकी तो आंखें हैं, भगवान तो अंधे नहीं है। महात्मा जी जो कथा कर रहे हैं वो तो अंधे नहीं है, वो तो मेरे पे कृपा दृष्टि डाल सकते हैं, और मैं कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन अपने मन में कर सकता हूं, कैसे भगवान होंगे। कि सांवला सलोना स्वरूप है, हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई है, माथे पे मुकुट लगा रखा है, तिलक लगा रखा है, तो इस तरह किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, चरण में पायल पहनी हुई है, एक टांग टेढ़ी खड़ी है, त्रिभंग स्वरूप है, मतलब मैं आई इमेजिन, मतलब भगवान के स्वरूप का निराकार रूप से दर्शन कर रहा, दर्शन स्वरूप का कर रहा है, परंतु एक इनडायरेक्ट परसेप्शन है। आई कैनॉट सी हिम डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आई कैन विजुअलाइज हिम कि भगवान कैसे लगते होंगे। आप कभी अपने जीवन के अंदर भगवान को बहुत अच्छे तरीके से स्मरण करके, मतलब डीप स्मरण जिसे डीप चिंतन कहते हैं, चिंतन करके सोचिएगा कि आपको किसी मंदिर में जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, आपने अभी किए नहीं है, यू नॉट गॉन टू दैट टेम्पल, यू नॉट गॉन टू दैट तीर्थ स्थान, आपने तीर्थ स्थान के भी दर्शन नहीं किए हैं, पर आपके मन में जो है उसके बारे में एक पिक्चर बननी शुरू हो जाती है। ऐसा होगा, नदी का पार्ट ऐसा होगा, वहां झोंपड़ी ऐसी बनी होंगी, नहाने का स्थान ऐसा होगा, शहर ऐसा होगा, मंदिर ऐसा होगा, एंड वेन यू गो ओवर देयर आपको लगता है कि 50-60% जो है आपके माइंड में पिक्चर आ चुकी थी इसकी, बिना देखे हुए, बिना देखे आप उस स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय है। तपस्या का अर्थ क्या होता है? तप, व्हाट इज तप, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ तप, तप किस लिए किया जाता? सोने को तपाया जाता है तो कुंदन बनता है, प्योरीफाई होता है। तपाने का मतलब है यू आर प्योरीफाई, प्योरीफिकेटरी प्रोसेस, प्योरीफिकेटरी प्रोसेस है, आपको प्योरीफाई कर रहा है ये। तपस्या जो है आपको प्योरीफाई करती है, दिस इज द ओनली एडवांटेज ऑफ तपस्या। उस प्योरिफिकेशन जब हो जाती है तो प्योरिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन का फायदा क्या है, प्योरीफाई हो गया। गन्ना देखते हैं ना, उसका रस किस रंग का होता है, और चीनी देखते हैं तो किस रंग की होती है। कैन यू इमेजिन गन्ने से चीनी बनी होगी? गन्ना जो खेत में खड़ा है उससे चीनी बनती है। कितना प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, करते 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 यू गेट व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर, बिल्कुल सफेद, और उसमें भी क्वालिटी है। जब आप उसको पानी में उबालते हो तो कईयों पे जो है मेल फैने के रूप में आ जाती है और कईयों में नहीं आती। तो इट्स मोर प्योरिफाइड, हाईली प्योरिफाइड। हम वैक्सीन यूज करते हैं एज ए डॉक्टर, हाईली प्योरिफाइड वैक्सीन, इंजेक्शन यूज करते हैं, हाईली प्योरिफाइड इंजेक्शन, मीन्स उसमें गंदगी नहीं है। तप आपके अंदर से गंदगी को निकाल फेंकता, आपके मन को शुद्ध और पवित्र कर देता है। फायदा क्या होता है? भगवान आपके अंदर कहां विराजमान है? हृदय गंदा होगा तो भगवान को कष्ट नहीं हो रहा होगा। घर में कोई मेहमान आता है तो आप झाड़ू पोछा करते हो, फसाफ चादर बिछाते हो, पहले उसके ऊपर कपड़ा मारते हो, तब उसको बिठाते हो। इज गेस्ट, इसके लिए आओ भगत, स्वागत इस तरह का होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू सिट ऑन अ क्लीन एंड नीट प्लेस। और हृदय के अंदर हमारे दुनिया भर का गंध भरा हुआ है, उसमें भगवान विराजमान है। कितना कष्ट पा रहे होंगे, कितना तकलीफ उठा रहे होंगे, क्या हमने कभी इस बात पे विचार किया? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सब चीजें हमारे अंदर विराजमान है। वो मन जो है जब प्यूरिफाइड नहीं है तो उसके अंदर भगवान को बैठने में कष्ट हो रहा है। हमें देखना है कि हमारा मन पवित्र हो, और मंत्र मतलब मन को तार देता है, मन को प्यूरिफाई कर देता है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चलता है, तपस्या करते हो आप, मंत्र जप करते हो, मन प्यूरिफाई होता है। आप नियमों का पालन करते हो, मन प्यूरिफाई होता है। अभक्ष्य पदार्थ खाना बंद कर देते हो, मन प्यूरिफाई होता है। आप उस लेवल पे आते हो, यह सर्वत्र अनभी स्नेह तत्त्य प्राप्त शुभ शुभ न अभिनंदति ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता। आपको किसी व्यक्ति से घृणा नहीं है, आप किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है, और जलन चालू और उसकी टांग कैसे खींची जाएगी सोचना शुरू कर दिया। नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जैसे जैसे आप तपस्या करते जाएंगे वैसे वैसे भगवान को समझते जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय। इसका मतलब है भगवान के हृदय को समझना है तो पहले मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। देन आई अंडरस्टैंड कि यस, कैसा है भगवान का हृदय? मुलायम की कठोर, कठोर है। अरे इतने कष्ट देते हैं हमको, काहे के मुलायम है? इतनी तकलीफें देते हैं, गरीबी दे रखी है, बुढ़ापा दे रखा है, बीमारियां दे रखी है, घर में क्लेश दे रखा है, तो काहे के मुलायम है? तो बड़े कठोर है। ये भगवान की मुलायमियत है। क्यों? भगवान कहते हैं जब मैं किसी जीव को नरक की प्राप्ति कराता हूं तो उसका प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, इट इज प्यूरिफाइंग प्रोसेस। जब आपको इसी भौतिक संसार के अंदर कष्ट मिलते हैं, तकलीफ मिलती है, दुखे मिलते हैं, इसका मतलब है दिस इज ए प्यूरिफाइंग प्रोसेस। आपको पवित्र किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है, अर्थात आपके पापों का क्षय होता जा रहा है, पाप कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, ताकि आपको इसी जीवन में कुछ भोगने को मिल गया, शायद नरक से प्राप्ति ना हो, आप बच जाओ। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि मैं हमेशा जो है विपदाओं को आमंत्रित करती हूँ, मैं चाहती हूँ विपदाएं बार बार आए, क्यों? विपदाएं आती हैं तो आप स्मरण आते हो, आप स्मरण आते हो तो आप आते हो। तो भगवान जो है जब तपस्या करते हैं, इसका मतलब है अब हम भगवान के हृदय को समझ पाने में सक्षम हो गए। विद्या, विद्या जो है मेरा शरीर है। विद्या का मतलब क्या है? व्हाट इज विद्या? विद्या का अल्टीमेट क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट विद्या? विद्या का अंतिम एक शब्द है, एक एक चार पांच शब्द हैं बस, एक कृष्ण ही ब्रह्म है तत्व, जिसने जान लिया इसका मतलब है अब वो विद्या के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया। जितना जितना ज्ञान प्राप्त करते जाओगे, जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति करते जाओगे, स्वाध्याय करते जाओगे, स्पिरिचुअल नॉलेज लेते जाओगे, अल्टीमेटली एक ही बात पे पहुंचोगे, एवं यो वेति तत्वतः। तत्वतः मतलब जो मुझे तत्व से जान लेता है, और तत्व से क्या जान लेता है, कृष्ण ही परम ब्रह्म है, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर भगवान कृष्ण ही परम ब्रह्म है। जिसने ये बात समझ ली उसने अर्थात भगवान को तत्व से जान लिया, मतलब उसने विद्या का अल्टीमेट जान लिया। वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी डिफिकल्ट, जिसने उस लेवल पे पहुंच गया है इसका मतलब है उसने भगवान के शरीर को समझने की योग्यता प्राप्त कर ली है। आध्यात्मिक कार्य तथा अनंतभूति ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। आध्यात्मिक कार्य मतलब क्रिया, क्रिया मीन्स एक्शंस, व्हाट एक्शंस यू शुड परफॉर्म, क्या कार्य करने चाहिए। जिसने ये समझ लिया कि सकाम कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, जिसको इस सारी बात को समझने के बाद कृष्ण भावना में कर्म करना आरंभ कर देता है, इसका मतलब है अब वो भगवान के शरीर को समझने के लिए सक्षम हो गया। अब वो भौतिक आनंद के लिए कार्य नहीं करता, अपने मजे के लिए, आत्मतुष्टि के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने इंद्र भोगों के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य ना करके केवल भगवान के लिए कार्य करता है। जिसने ये बात समझ ली, भगवान का वास्तविक अनुरूप समझ लिया, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनकी आकृति, और उचित रीति से संपन्न हुए कर्मकांड तथा यज्ञ मेरे शरीर के विविध अंग हैं। अर्थात यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जिसके द्वारा आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो, एक प्रोसेस, एक फॉर्मेट, एक फॉर्मूला, एक कार्य, एक तरीका जिसके द्वारा आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो। एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ने वाली वस्तु पुल कहलाती है, मतलब आपने एक ऐसा पुल डिजाइन कर लिया है जिसके द्वारा आप अपने आप को भगवान से जोड़ लेते हो, अर्थात आप भगवान के अंगों को समझने में सक्षम हो गए। और वो पुल क्या है, व्हाट इज दैट पुल, व्हाट इज दैट यज्ञ, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आपको कलयुग के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र ही वो यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इन अंगों से ज्यादा सूक्ष्म क्या है, मन। मन क्या है, फिर मन को भगवान ने और डिफाइन किया, धर्म ही मन है। और धर्म क्या है, धर्म की यहां पर दो परिभाषाएं हैं, एक है वैदिक आदेशों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य धर्म कहलाता है, पर वो उसकी अल्टीमेट क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। अर्थात आपको हर वो कार्य करना है जिसके द्वारा आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर सको। टू डिफरेंट स्टोरीज, एक लड़का लड़की से प्रेम करता है, लड़की उससे प्रेम नहीं करती, ये सिचुएशन अच्छी है, या लड़का लड़की से प्रेम करता है, लड़की भी उससे प्रेम करती, सिचुएशन अच्छी है। इट हैज टू बी यूनिलैटरल और बायलैटरल। मैं आदान कर रहा हूं, प्रदान कर रहा हूं, ले भाई प्रेम ले लो प्रेम, वो तो मुझसे करते नहीं भैया, आप तो मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं आपसे प्रेम किए जा रहा हूं। व्हाट इज रिक्वायर्ड, मुझे वो कार्य करने हैं वैदिक आदेशों के अंतर्गत जिससे भगवान मुझसे प्रेम करने के लिए मजबूर हो जाए। मैं तो उनसे प्रेम कर ही रहा हूं, पर इट इज वन वे ट्रैफिक, ट्रेन जा तो रही है पर वापस नहीं आ रही। तो मुझे क्या चाहिए कि ऐसे कार्यकलाप, अर्थात मेरा मन, भगवान के मन को समझने के लिए, भगवान के मन में प्रवेश पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुण्य तथा आध्यात्मिक कार्यों से रास्ता चुनना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो कृष्ण भावना भावित कर्म, अर्थात वो कर्म जिनका फल ना प्राप्त हो, अर्थात अकर्म के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करना पड़ेगा। आप कृष्ण की पूजा करते हैं, हाँ जी मैं कृष्ण की भी पूजा करता हूं। आप कृष्ण की पूजा करते हैं, हाँ मैं कृष्ण की ही पूजा करता हूं, तो कौन सा लेवल बेटर है, कृष्ण की ही, तो उस लेवल पे आना पड़ेगा, तब आप भगवान के मन में प्रवेश पा सकते हो, उनको समझ सकते हो। और विविध भागों में मेरे आदेशों को लागू करने वाले देवता मेरे प्राण हैं, मेरी जीवन है, मेरी आत्मा। भगवान ने कहा है कि जो आपसे सुपीरियर हैं, जब भगवत गीता का 16वें अध्याय का पहले से लेकर 3रा श्लोक पढ़ेंगे तो आपको जो है दैवी गुण जो होते हैं उनका उल्लेख मिलता। 12वें अध्याय के अंदर 13वें से लेकर 20वें श्लोक तक आपको जो है जो भक्त के अंदर 39 गुण है उनका उल्लेख मिलता। मतलब आपको दैवी गुण, जिसने दैवी गुण प्राप्त कर लिए हैं अर्थात वो देवता के प्लेटफॉर्म पे आ जाए। देवता मीन्स दैवी गुणों वाला, जिसके अंदर दैवी गुण आ जाएंगे वो देवता के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, तो वो व्यक्ति भगवान कहते हैं वो मेरे जीवन और आत्मा है। अगर आपने ऐसे व्यक्ति की उंगली पकड़ ली जिसमें दैवी गुण हैं, तो क्या होगा? उसने आपकी उंगली पकड़ ली तो क्या होगा? क्या होगा? बच्चे की उंगली पकड़ते हैं, बच्चा हमारी उंगली पकड़ लेता है तो हम बच्चे को जहां चाहे वहां ले जाते हैं और बच्चा उसी हिसाब से चलता जाता है। इसका मतलब है कि हमारी उंगली पकड़ने के बाद बच्चा हमारे शरणागत है, हमारे कहे अनुसार चल रहा है, जहां हम ले जाएंगे वहां जा रहा है। ही सरेंडर्ड टू अस, क्योंकि उसने हमारी उंगली पकड़ ली। हम ऊंचे चढ़ रहे हैं तो ऊंचा चढ़ेगा, नीचे जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं लिफ्ट में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं पैदल जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं कार में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जा रहे हैं, पिक्चर हॉल जा रहे हैं तो पिक्चर हॉल जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं तो होटल में जा रहे हैं, अर्थात जहां पार्क में जा रहे हैं पार्क में, जहां हम उसको उंगली पकड़ के ले जाएंगे वहां ले जाएगा। परंतु जो व्यक्ति जिसके अंदर दैवी गुण आ गए हैं, जो भगवान के जीवन और आत्मा है, उसने हमारी उंगली पकड़ ली तो हमें कहां ले जाएगा? किसके प्रति आप सरेंडर्ड हो? टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, प्रमाणिक प्रतिनिधि के लिए। जब स्पिरिचुअल मास्टर ने आपकी उंगली पकड़ ली, आई स्टिल रिमेम्बर, आई हैव अ गुड रियलाइजेशन ऑफ माइंड, आई स्टिल रिमेम्बर 1998 के अंदर जब मैं फेस्टिवल कमेटी का चेयरमैन था बड़े मंदिर में, तो मैं, मेरे को टाइम नहीं मिलता, नया नया मंदिर बना था, बहुत बिजी रहता था शेड्यूल, तो मैं महाराज के दर्शन भी नहीं कर पाता था। महाराज मंदिर में है पर मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना बिजी था। महाराज कहते थे जॉब फर्स्ट, पहले काम, आई विल टॉक टू यू ऑन फोन। और लोग जाते थे हमारे साथ के जो नए नए भक्त थे, वो महाराज के आगे पीछे में बैठे बूटे खूब, मतलब उनके सामने अपने दर्शन देते रहते थे महाराज को। तो मैंने एक महाराज से एक दिन जाके बोला 8:30 रात के, उनका महाराज मैं सुबह 8 बजे मंदिर में आया था, रात हो गई, आप जब मैं फ्री था आप बिजी थे, अब किसी मीटिंग में अब तो फ्री बैठे नहीं सारा दिन, इज बिजी इन मीटिंग्स, जब आप फ्री हुए तब मैं किसी जगह बिजी हूँ तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता हूँ, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी, मेरा क्या होगा। तो महाराज ने एक ही लाइन में उत्तर दिया, बोले कृष्ण हरि यू डू योर जॉब एज आई हैव सजेस्टेड यू, इंस्ट्रक्टेड यू, अपना काम वैसे करो जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन किया हुआ। किसकी उंगली प्रभुपाद के हाथ में पकड़ानी है मैं जानता हूं, डोंट वरी कैरी ऑन। तो मैंने उस बात को गांठ बांधा हुआ। मैं अभी महाराज से मिला 8 महीने के बाद, 8 months, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले की बात। तो महाराज ने मेरे से पूछा कि अब तुम इतना बहुत दिनों बाद मिले, मतलब महाराज 8 महीने हो गए आपसे मिले हुए, दैट्स वेरी लॉन्ग टाइम, यू कीप वेरी बिजी। मैंने महाराज आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है प्रचार करने का, महीने में 15-20-22 लेक्चर हो जाते हैं, मैं उसमें बिजी रहता हूँ, जब आप यहाँ होते हैं तो मेरे लेक्चर होते हैं और मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, आपसे मिल नहीं पाता। नो, विल टॉक ऑन फोन, डोंट वरी। महाराज मैं अगली बार लेक्चर कैंसिल करके आपके दर्शन करने आ जाऊं। नो, विल टॉक ऑन फोन, कैरी ऑन। तो ये जो भागवत है, महाभागवत है, जब ये उंगली पकड़ लेंगे तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, दैट इज द अल्टीमेट। और किस और मैं उनकी उंगली नहीं पकड़ू, वो मेरी उंगली पकड़ रहे हैं, दिस मीन्स आई हैव टू सरेंडर माई सेल्फ इन सेवा, आई हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जब भगवान आपकी उंगली पकड़ लेंगे, अर्थात अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशय तस्य अहम सुलभ वार्ता, मैं उसके लिए सुलभ हूं कि तुमने पुकारा और हम चले आए। वो कब होगा? जब आप जो है भगवान के आदेशों का पालन करने वाले विविध देवताओं का भी आदर मान और सम्मान करोगे। यू हैव टू ऑनर देम, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। जिस दिन आपने रिस्पेक्ट शुरू कर दी, देखिए, एक पत्नी जो है जब ससुराल जाती है तो प्रे करती है, सिर्फ समर्पण करती है पति को, परंतु आदर मान सम्मान सब ससुराल वालों को देती है, चाहे जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, नंद है, नंदोई है, सास है, ससुर है, उनके रिश्तेदार हैं, आदर मान सम्मान सबको देती है, पर सरेंडर पति को करती है। एंड दिस इज द फॉर्मेट फॉर अस कि हमें आदर मान सम्मान सबको देना है, क्योंकि भगवान के वो प्राण है, परंतु सरेंडर कृष्ण को करना। जिस दिन ये बातें समझ में आ जाएंगी, देन वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग भगवान का स्वरूप क्या है। हम आंखों में योग्यता न रखते हुए भी भगवान के स्वरूप को समझने में सक्षम हो जाएंगे। सबसे इजी तरीका क्या है कि भगवान सामने खड़े हैं, इनको समझो, दर्शन करो, तत्व से जानो और कृष्ण कथा सुन के हरि नाम जप के भगवान के धाम पहुंच जाओ। दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। शील बहुवाद की।